देखिए भाई आगे सबक वलम मादा करफी तफसील मोरबिल मुनसरिफ वगैर अल मुनसरिफी व कान गैर उल मुनसरिफी अकल मिन अल मुनसरिफ व बिमारिफत ही योरफ उल मुनसरिफ अलाकियासिल एराब तकदीरी ये वल्लफी ये عرف غير المنصرف واكتفى بتعريفه فقال غير المنصرف ما أي اسم معرب فيه علتان. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اعراب جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں بھائی، ایک اعراب لفظی ہے اور ایک اعراب تقدیری ہے. اعراب لفظی وہ ہے جس میں باقاعدہ اعراب پر تلفظ کیا جاتا ہے، تلفظ سے ہی اعراب کا پتہ چل جاتا ہے، جیسے زیدن زیدن زیدن. دیکھو سننے سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میں رفع پڑھ رہا ہوں یا نصب یا جر. زیدن پر میں نے دیکھو رفع پڑھا، زیدن پر نصب اور زیدن پر جر. تو یہ اعراب لفظی ہے، اور دوسری قسم ہے اعراب تقدیری. اعراب تقدیری وہ ہے جس پر تلفظ نہیں کیا جاتا بھائی، جس پر تلفظ نہیں کیا جاتا، جیسے اس میں مقصور ہے بھائی، جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ. دیکھو یہاں اعراب تقدیرن ہے، تلفظ سے پتا نہیں چل رہا کہ رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے. اس کے بعد پھر علامہ جامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اعراب تقدیری کو صاحب کافیہ نے مقدم کیا، حالانکہ اصل اعراب لفظی ہے اور اعراب تقدیری اس کی فرع ہے، تو اصل کو مقدم ہونا چاہیے اور فرع کو مؤخر، لیکن اعراب تقدیری کو اس لیے مقدم کر دیا کہ اس کے اندر تفصیل کم تھی اور اعراب لفظی میں تفصیل زیادہ تھی. تو جو قلیل تھا یعنی کم قسموں میں آ رہا تھا جس میں تفصیل کم تھی اس کو مقدم کر دیا، اور لفظی کے بارے میں صرف یہ کہہ دیا کہ ان کے علاوہ باقی جگہوں میں معرب کے اندر اعراب لفظی ہوگا. تو یہ چار جگہیں ذکر کیں جن میں اعراب کیا ہے، تقدیری ہے بھائی. اور پھر بتلایا تھا کہ اعراب تقدیری اس اسم معرب میں آئے گا کہ جہاں پر اعراب کا پڑھنا متعذر ہو یا ثقیل ہو. اعراب کا پڑھنا متعذر ہو یعنی پڑھنا ممکن ہی نہ ہو، اور وجہ اس کی یہ کہ وہ آخری حرف جس پر اعراب آنا ہے وہ اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. جیسے الف مقصورہ ہے، جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بھی موسیٰ، اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، اور الف جو ہے وہ حرکت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. یا جیسے غلامی ہے بھائی، غلامی کے اندر یا اس کے ساتھ آ کر جڑ گئی اور یا اپنے سے ماقبل کسرہ چاہتی ہے، تو غلامی کی میم کے نیچے کسرہ آ گیا بھائی. اب یہ غلامی کی جو میم ہے اس میں اعراب کی صلاحیت ہی باقی نہ رہی، اب اس پر کوئی اور حرکت نہیں آ سکتی، نہ اس کے موافق حرکت آ سکتی ہے نہ اس کے مخالف. اس کے موافق حرکت آ جائے یعنی کسرہ ہے تو کسرہ ہی لے آؤ، یا اس کے مخالف لے آؤ یعنی ضمہ یا فتحہ لے آؤ. نہیں بھائی، کوئی ایک حرکت بھی یہاں نہیں آ سکتی بھائی، حرکت یہاں پہلے سے ہی موجود ہے، وہی رہے گی. بات سمجھ میں آ گئی. تو اعراب متعذر کہاں ہوتا ہے؟ جہاں آخری حرف میں اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو. اور دوسری جگہ جہاں اعراب تقدیری آئے گا کہ جہاں اعراب کا پڑھنا ثقیل ہو، اور یہ اس جگہ پر ہوگا جس میں وہ جو محل اعراب ہے یعنی آخری حرف ہے وہ اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، جیسے قاضیون قاضیان قاضیین. اب یہ جو یا ہے یہ اس پر ضمہ اور کسرہ اس پر آ تو سکتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی زبان پر ثقیل ہو تو اس پر بھی اعراب تقدیری آئے گا. اور صرف کون سی دو حالتوں میں؟ رفعی اور جری حالت میں. نصبی حالت میں نصب یعنی فتحہ اس پر آ سکتا ہے، کیونکہ فتحہ یا پر ثقیل نہیں. तो ये एराब बिल हरकत जो है ये सकील हुआ। और इसी तरह कभी एराब बिल हर्फ भी सकील हो जाता है, जैसे मुस्लिमी या हालत रफ़ई में, ये असल में क्या था, मुस्लिमू या, फिर वो और या जमा हुए, अव्वल साकिन था तो वो को या करके या में इदगाम कर दिया गया तो मुस्लिमू या हुआ, फिर या अपने से माकबल कसरा चाहती है तो मुस्लिमी या हो गया भाई। अब इसके अंदर देखो हालत रफ़ई में ये मुस्लिमूना और या है भाई, तो मुस्लिमूना के एराब की बात चल रही है, उसका रफा किसके साथ आता है, वाओ के साथ, और जा अ मुस्लिमिया, क्या मैं इस वक्त कोई वाओ पढ़ रहा हूं, वाओ नहीं पढ़ रहा, वो वाओ तो या होकर उसका या में इदगाम हो चुका है, तो ये इसका रफा तकदीरी हुआ भाई। इस मुस्लिमिया में मुस्लिमूना जो आ रहा है उसका रफा तकदीरी हो गया, और नसब और जर जो है वो लफ्जी होंगे, क्योंकि नसब और जर मुस्लिमूना का किसके साथ आता है, या के साथ, मुस्लिमीना, और इसको या के साथ जोड़ा तो फिर नून इजाफत से गिर गया तो क्या बन गया, मुस्लिमी या, फिर या का या में इदगाम किया तो क्या बन गया, मुस्लिमी या। तो देखो इनका नसब और जर या के साथ आता था और वो या अभी भी मौजूद है, सिर्फ उसका इदगाम हुआ है या के अंदर, और इदगाम से कोई चीज की हकीकत नहीं बदल जाती, तो वो या अभी भी मौजूद है, तो नसब और जर इनमें लफ्जी है भाई। और उसके बाद साहिब जामी ने आपको बतलाया था कि कभी कभार एराब बिल हर्फ तकदीरी होता है तीनों हालतों में, और वो कब, वो जब अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुहदा मुजाफा इला गैरिया मुतकलम, ये जब मुजाफ हो जाए मुआर्रफ बिल्लाम की तरफ, तीनों शर्तें पूरी हों, मुकब्बर हों यानी इनकी तस्गीर ना हो, मुहद हों यानी मुफरद हों तस्निया जमा ना हो, और याए मुतकलम के अलावा की तरफ मुजाफ हों, तो तीनों शर्तें पूरी हैं, तो इन शर्तों के पूरा होते हुए वो किसकी तरफ मुजाफ हो जाए, मुआर्रफ बिल लाम की तरफ। अब देखो मुआर्रफ बिल लाम की तरफ मुजाफ है तो देखो इजाफत तो पाई जा रही है, और इजाफत भी गैर या मुतकल्लिम की तरफ है, तो इस सूरत में वाव अलिफ और या इसके अंदर एराब आएगा, लेकिन फिर वो वाव अलिफ और या इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिर जाएंगे, तो उन पर तलफुज नहीं होगा, जब उन पर तलफुज नहीं होगा तो एराब तकदीरी हो जाएगा। जा अनी अबुल कौमी राय तो अबल कौमी मरर तो भी अबिल कौमी, तो जा अनी अबुल कौम, मैं वाव पढ़ रहा हूं या वाव इज्तिमाई साकिनैन से गिर चुका है, गिर चुका है, तो एराब क्या हुआ, तकदीरी, वह आया तो लेकिन इज्तिमाई साकिनैन से गिर गया। और रअयतु अबल कौमी, जी अबल कौम पढ़ रहा हूं या अबल कौम, अबल कौम, देखो अलिफ में नहीं पढ़ रहा, अलिफ इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिर चुका है, तो अलिफ आया तो लेकिन गिर गया, तो एराब क्या हुआ, तकदीरी। और इसी तरह मररतु भी अबिल कौमी, देखो यहां या गिर चुकी है, अगर या बरकरार होती तो मैं कैसे पढ़ता, अबील कौम, लेकिन मैं क्या पढ़ रहा हूं, अबील कौम, तो या गिर चुकी है तो एराब तकदीरी हुआ भाई। लेकिन इसको साहिब काफिया ने शुमार नहीं किया, इसको जिक्र नहीं फरमाया, वजह यह कि यहां पर जो अलिफ वाव और या हैं वो आए तो हैं, शर्तें सारी पूरी हैं, आए हैं, लेकिन अगले कलिमे की वजह से ये गिरे हैं, क्योंकि आगे साकिन आ रहा था तो इज्तिमाई साकिनैन से ये गिरे हैं। जबकि गुलामी और मुस्लिमिया इसमें भी देखो साथ या जुड़ी हुई है, जैसे अबुल कौम में क्या जुड़ा हुआ है, साथ मुजाफिल है, और उसकी वजह से वो अलिफ और या गिर रहे हैं, तो यहां गुलामी और मुस्लिमिया के अंदर भी या साथ जुड़ी है, मुजाफिले आया है, और फिर उसकी वजह से ये एराब की किस्म बनी, लेकिन इनको बाकायदा अलग शुमार किया भाई, हालांकि यहां भी दो कलिमे हैं, वजह ये कि ये जो जमीर मजरूर है ये मुत्तसिल है, ये जुजे कलिमा की तरह है, क्यों जुजे कलिमा की तरह है, मैंने आपको बतलाया था कि जमीर तीन किस्म पर है, मरफू, मनसूब और मजरूर, ये जो मरफू जमीर है ये मुत्तसिल भी होती है और मुनफसिल भी, मुत्तसिल होती है किसी लफ्ज से जुड़ी हुई आती है, और कभी मुनफसिल होती है अकेली किसी से नहीं जुड़ती, तो मरफू मुनफसिल भी होती है और मुत्तसिल भी, इसी तरह मनसूब जो है वो भी मुत्तसिल भी होती है और मुनफसिल भी, जबकि मजरूर सिर्फ मुत्तसिल होती है, वो मुनफसिल आती ही नहीं है, तो यहां पर जो जमीर है मुजाफिले है गुलामी और मुस्लिमिया में वो मजरूर मुत्तसिल है, तो वो अकेली रहती नहीं है, तो उसको किसकी तरह शुमार किया, जुजे कलिमा की तरह शुमार किया, क्योंकि मजरूर मुनफसिल तो होती ही नहीं है, तो ये जुजे कलिमा की तरह है। जब जुजे कलिमा की तरह है तो गोया एक लफ्ज है, तो इसलिए इनके एराब को जिक्र किया। बात समझ में आ गई। और उसके बाद आखिर में आपको बतलाया कि लफ्जी एराब इन दोनों के अलावा में होगा, यानी जहां एराब मुताजिर हो और जहां एराब सकील हो, इन दो सूरतों के अलावा बाकी तमाम जगह मुअरब के अंदर एराब लफ्जी आएगा। तो देखो लफ्जी में कितनी ज्यादा तफसील थी, लफ्जी में बड़ी तफसील थी भाई, पीछे 12 किस्में जिक्र हुई, उनमें सब में एराब बिल हरकत या बिल हरूफ था और वो एराब लफ्जी था, और ये जो एराब तकदीरी है ये सिर्फ 4 किस्मों में आया। तो देखो लफ्जी में तफसील ज्यादा थी, 12 किस्मों में था, और तकदीरी में तफसील कम थी, वो सिर्फ 4 किस्मों में था। तो इसलिए साहिब काफिया ने तकदीरी को पहले बयान किया ताकि थोड़ी तफसील बयान करना पड़े, क्योंकि तकदीरी एराब थोड़े हैं, और बाकियों के बारे में कह दिया कि इनके अलावा बाकी सब में क्या है, एराब लफ्जी है। तो अब एराब लफ्जी की पूरी तफसील बयान करने की हाजत न पड़ी भाई। अब आइए आज के सबक पर भाई। वलम्मा दकरफी तफसील मोरबी, ये आगे आने वाले मतन की तमहीद है भाई। आगे साहिब काफिया गैर मुनसरिफ का बयान शुरू फरमा रहे हैं, तो साहिब जामी आपको बतला रहे हैं कि गैर मुनसरिफ का बयान माकबल में गुजर चुका है, जहां एराब के एतबार से इसम की किस्में जिक्र हुई थीं, वहां पर साहिब काफिया ने आपको गैर मुनसरिफ के बारे में बतलाया था कि गैर मुनसरिफ का एराब हालत रफ़ई में जम्मा के साथ और हालत नस्बी जर्री में फतह के साथ आएगा। वहां गैर मुनसरिफ का जिक्र आ गया था, अब उसकी तफसील बयान करने लगे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि इसम में असल तो है मुनसरिफ होना, साहिब काफिया को पहले मुनसरिफ का बयान करना चाहिए था कि मुनसरिफ किसे कहते हैं, और उसके बाद गैर मुनसरिफ का बयान करना चाहिए था। तो साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि भाई मुनसरिफ में तफसील ज्यादा थी और गैर मुनसरिफ में तफसील कम है, तो पहले गैर मुनसरिफ को बयान कर देंगे, और इसके अलावा जो इसमें मौरब होंगे वो मुनसरिफ होंगे, वो खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। गैर मुनसरिफ की तारीफ करके आपको बतलाएंगे कि गैर मुनसरिफ वो होता है जिसमें गैर इंसिराफ की दो इल्लतें पाई जाएं, या कोई एक ऐसी इल्लत पाई जाए जो दो के कायम मकाम हो, उसको गैर मुनसरिफ कहते हैं। तो इससे खुद ही मुनसरिफ भी समझ में आ गया कि जो ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो मौरब मुनसरिफ होगा भाई। तो इसलिए गैर मुनसरिफ को बयान करेंगे और मुनसरिफ को बयान नहीं करेंगे, जैसे पीछे आया था भाई एराब लफ्जी और तकदीरी के अंदर एराब लफ्जी असल था और तकदीरी फरा था, लेकिन लफ्जी के अंदर तफसील ज्यादा थी और तकदीरी में तफसील कम थी, तो साहिब काफिया ने तकदीरी एराब को पहले बयान किया और लफ्जी के बारे में सिर्फ इतना कह दिया कि इसके अलावा जो है, यानी ये तकदीरी के अलावा एराब मौरब में हमेशा क्या होगा, लफ्जी होगा। लेकिन गैर मुनसरिफ में वो ये भी नहीं कहेंगे कि ये गैर मुनसरिफ है, इसके अलावा जो होगा वो मुनसरिफ होगा, नहीं ये भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बात खुद ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि मौरब दो ही किस्म पर है, या वो मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है। तो जब गैर मुनसरिफ समझ में आ गया तो ये बात भी समझ में आ गई कि जो ऐसा नहीं होगा वो मुनसरिफ होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए भाई कहते हैं वलम मादा करफी तफसील मोरब इल मुनसरिफ व गैर अल मुनसरिफी, और जब जिक्र कर दिया साहिब काफिया ने मोरब की तफसील में, क्या जिक्र किया, अल मुनसरिफ व गैर अल मुनसरिफी, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ को, पीछे जहां एराब के एतबार से इसम की किस्में आई थी, तो जब मोरब की तफसील में साहिब काफिया ने मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ को जिक्र कर दिया, वकान गैर उल मुनसरिफी अकल मिन अल मुनसरिफी, और गैर मुनसरिफ जो है वो मुनसरिफ के मुकाबले में कलील है, व बिमारिफती ही यौरफुल मुनसरिफ, और गैर मुनसरिफ को जानने से मुनसरिफ को भी जान लिया जाएगा, अला कियासिल एराब तकदीरी वल लफ्जी, एराब तकदीरी और लफ्जी के कयास पर, उनके तरीके पर। जैसे वहां क्या था, तकदीरी को बयान कर दिया तो लफ्जी के बारे में सिर्फ इतना कह दिया, इसके अलावा वो एराब लफ्जी है। तो वहां जैसे अकल को जिक्र करके अक्सर को पहचान लिया गया, यहां पर भी गैर मुनसरिफ अकल है तो उसको जिक्र कर देंगे तो जो अक्सर है यानी मुनसरिफ उसको भी जान लिया जाएगा। यह माना है वह भी मारिफती ही यौरफुल मुनसरिफ, और गैर मुनसरिफ की मारिफत से मुनसरिफ को भी जान लिया जाएगा। अला कियासिल एराबी तकदीरी ये व लफ्जी, ये एराब तकदीरी और लफ्जी के कयास पर, उन्हीं के कयास पर, उन्हीं के तरीके पर। भाई अर्रफा गैर अल मुनसरिफी, ये जजा आ गई भाई, पीछे आया था लम्मा, लम्मा शर्त के लिए आता है और ये उसकी जजा है। अर्रफा गैर अल मुनसरिफी, तो तारीफ की मुसन्निफ ने गैर मुनसरिफ की, तो तारीफ की मुसन्निफ ने गैर मुनसरिफ की। देखो शर्त जजा किस तरह बनते हैं, तर्जमा सिर्फ देखो, तर्जमा जब मुसन्निफ ने मुआरब की तारीफ में मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ को जिक्र कर दिया, और गैर मुनसरिफ जो है मुनसरिफ के मुकाबले में कम है, और गैर मुनसरिफ को जानने से मुनसरिफ को जान लिया जाएगा, तो अर्रफा गैर अल मुनसरिफी, तो फिर मुसन्निफ ने गैर मुनसरिफ की तारीफ की कि गैर मुनसरिफ को जानने से मुनसरिफ को भी जान लिया जाएगा। भाई वक्तफा भी तारीफी ही, और इस गैर मुनसरिफ की तारीफ पर ही इक्तफा किया, यानी मुनसरिफ की तारीफ सिरे से जिक्र ही नहीं की साहिब काफिया ने, क्योंकि मुनसरिफ को भी जान लिया जाएगा। जब गैर मुनसरिफ को पहचान लिया कि गैर मुनसरिफ वो है जिसमें दो इल्लतें हों या कोई एक इल्लत हो जो कायम मकाम दो के हो, तो मुनसरिफ को भी इससे जान लिया गया, जो ऐसा नहीं होगा यकीनन वो क्या है, मुनसरिफ। तो उसको जब जान लिया गया तो सिर्फ गैर मुनसरिफ पर इक्तफा कर लिया कि इसी से मुनसरिफ भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वह बिजिद्दिहा ततबय्यनुल अशिया, भाई चीजों का पता उनकी जिद से चलता है। आपको गर्मी का पता चल जाए तो सर्दी खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगी, आपको दिन का पता चल जाए तो रात खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ गई, तो चीजों का पता उनकी अजदाद से, उनकी जिद्दों से चलता है। तो जब गैर मुनसरिफ समझ में आ जाएगा तो मुनसरिफ भी समझ में आ जाएगा। यह माना है वक्तफा भी तारीफ ही, और साहिब काफिया ने सिर्फ गैर मुनसरिफ की तारीफ पर इक्तफा किया। फकालफ, तो फरमाया गैरुल मुनसरिफी, जी अब सिर्फ जरा मतन मतन देखिए, गैरुल मुनसरिफी मा फीही इल्लतानी मिन तिसइन औ वाहिदतुम मिनहा तकूमु मकामहुमा। गैर मुनसरिफ मा से मुराद है इसमें मुअरब, गैर मुनसरिफ वो इसमें मुअरब है फीही इल्लतानी, गैर मुनसरिफ वो मुआरब है फीह इल्लतानी जिसके अंदर दो इल्लतें हों, मिन तिसइन नौ इल्लतों में से। भाई याद रखो ये गैर इंसिराफ की नौ इल्लतें हैं जिनका आगे जिक्र आ रहा है दो चार सत्रों के बाद। नौ असबाब हैं गैर इंसिराफ के, उन नौ असबाब में से जो दो असबाब किसी इस्म के अंदर आ जाएंगे या कोई एक आ जाएगा जो दो के कायम मकाम हो, तो वो इस्म क्या कहलाएगा, गैर मुनसरिफ कहलाएगा। भाई तो कहते हैं गैरुल मुनसरिफ मा फीही इल्लतानी, गैर मुनसरिफ वो मुअरब है जिसके अंदर दो इल्लतें हों, मिन तिसइन नौ इल्लतों में से, औ वाहिदतुम मिनहा या उन नौ में से कोई एक ऐसी इल्लत हो, तकूमु मकामहुमा जो उन दो के कायम मकाम हो। तो याद रखो ये जो तकूमु मकामहुमा है ये सिफत है वाहिदतुम मिनहा के लिए, उनमें से कोई एक ऐसी इल्लत तकूमु मकामहुमा जो दो इल्लतों के कायम मकाम हो। तो ये तकूमु मकामहुमा, ये नकेरा के बाद तकूमु मकामहुमा जुमला आया और ये उसके लिए सिफत बनेगा। और मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज ले आते हैं। तो इसमें गैर मुनसरिफ वो मुअरब है जिसमें नौ इल्लतों में से दो इल्लतें हों या कोई एक ऐसी इल्लत हो, तकूमु मकामहुमा जो उन दो इल्लतों के कायम मकाम हो। भाई ये है गैर मुनसरिफ, बात समझ में आ गई। अब देखिए शरा के साथ, भाई गैरुल मुनसरिफी मा अइस्मुन मुअरबुन, जी मां की तफसीर की साहिब जामी ने आई इस्मुन मौरबुन के मां से मुराद है इसमें मौरब, ये मां का मिसदाक बयान कर रहे हैं और इस्मुन मौरबुन नकेरा निकाला, बतलाना ये चाहते हैं कि ये मां मौसूफा है मौसूला नहीं, क्योंकि मां मौसूला तो मारिफा होता है जो बमाने अल्लजी के होता है, अगर ये मां मौसूला लेंगे तो फिर आगे मारिफा के साथ उसकी तफसीर करनी पड़ेगी। आई लिस्मुल मौरबू, आई लिस्मुल मौरबू, तो मां को मौसूफा बनाया क्योंकि मां खबर है, गैरुल मुनसरिफी यह है मुब्तदा और मां फी इल्लतानी यह है उसकी खबर, और खबर में असल यह है कि वह नकेरा होनी चाहिए, तो इसलिए मां को मौसूफा बनाया। तो गैरुल मुनसरिफी मां गैर मुनसरिफ वो इसमें मौरब है, फी इल्लतानी जिसमें दो इल्लतें हों। आगे शारह जामी फरमाते हैं तो असीरानी बिजतिमाई हिमा वस्तिजमाई शरा इति हिमा फी ही असरन सयजी उजिक्रुहु। इल्लतान के बाद तो असीरान निकाला भाई कि वो दो इल्लतें ऐसी हों जो मुअस्सिर भी हों, जो मुअस्सिर भी हों भाई, मुअस्सिर भी हों। मसलन देखिए आपको बतलाएंगे कि ये असबाब मनासर्फ की नौ इल्लतें हैं भाई, और इनमें से बाज इल्लतें दो के कायम मकाम हैं और बाज जो हैं वो दो इकट्ठी हो जाएंगी जमा हो जाएंगी तो वो लफ्ज को गैर मुनसरिफ बना देंगी, लेकिन उसमें जरूरी है कि उन दो इल्लतों की शर्तें भी पूरी हों भाई, उन दो इल्लतों की अगर शर्तें पूरी नहीं होंगी तो फिर वो असर नहीं डालेंगी भाई, फिर वो उस लफ्ज को गैर मुनसरिफ नहीं बनाएंगी। जैसे काइमतुन, अब काइमतुन देखो ये सिफत भी है, मालूम हुआ कोई मुअन्नस जात है जो कियाम से मौसूफ हो रही है, तो काइमतुन ये सिफत भी है और इसके आखिर में तानीस की अलामत ताबी जुड़ी हुई है, तो ये वसफ भी है और मुअन्नस भी है, तानीस भी इसके अंदर है, दो सबब आ गए, लेकिन फिर भी ये गैर मुनसरिफ नहीं है बल्कि मुनसरिफ है, आप इस पर तनवीन पढ़ते हैं भाई। इसी तरह मरर तो भी निस्बतिन अरबाइन, मैं चार औरतों के पास से गुजरा, निस्बतिन मौसूफ है और अरबाइन उसकी सिफत। अब ये अरबाइन ये इसके अंदर वजन फेल भी है, अरबा बरवजन अकरम, देखो आखिर को ना देखें बाकी सारा वजन वही है फेल वाला, अकरमा की तरह है अरबा भाई, तो अरबा बरवजन अकरम, तो ये वजन फेल भी है अरबा में और नीज इसमें वसफियत भी है, बिन निस्वतिन अरबाइन, निस्वतिन है मौसूफ और अरबाइन है उसकी सिफत, तो दो सबब आ गए, लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं इस पर कसरा भी आ रहा है और तनवीन भी भाई, मरारतु भी निस्वतिन अरबाइन भाई, ये गैर मुनसरिफ नहीं, हालांकि दो सबब आ गए, कौन कौन से दो सबब, वजन फेल भी और वसफ भी, तो दो इल्लतें आ गई लेकिन इसके बावजूद ये लफ्ज जो है मुनसरिफ है, वजह इसकी ये कि शर्तें यहां पूरी नहीं है भाई, वसफ के अंदर शर्त यह है कि वो असले वजा के एतबार से वसफ होना चाहिए, यानी अरबों ने जब उस लफ्ज को वजा किया था तो वसफ के तौर पर वजा किया हो, और अरबाइन इसको तो वसफ के तौर पर वजा नहीं किया गया, ये तो एक आदद का नाम है, यानी चार का जो आदद है इसको अरबा कहते हैं अरबी जुबान में, यानी वो आदद जो तीन से बड़ा है और पांच से छोटा है, तो इस आदत के लिए अरबा का लफ्ज वजा किया गया है। तो यहां पर मरर तो बिन निस्वतिन अरबाइन, यहां तो अरबा क्या वाक हो रहा है सिफत, लेकिन असल वजा में ये सिफत नहीं, असल में इसको सिफत के लिए वजा नहीं किया गया था, और वसफियत कौन सी मोतबर है, गैर इंसिराफ में वो वसफियत मोतबर होगी, वो वाली वसफियत मुअसर होगी जो असल वजा में क्या हो, वसफ हो, तो अरबा असल वजा में वसफ नहीं है, असल में इसको वसफ के लिए वजा नहीं किया गया था, बाद में वसफ के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो आपको बतलाएंगे मतन में क्या आया, माफी ही इल्लतानी, वो मौरब जिसके अंदर दो इल्लतें हों, साहिब जामी आपको बतलाएंगे वो दो इल्लतें ऐसी हों कि मुअस्सिर भी हों, जमा होने के साथ साथ उनकी शर्तें भी उनमें पूरी हों भाई। तो कहते हैं फी इल्लतानी तो असिरानी, देखो इल्लतानी नकेरा आया और उसके बाद तो असिरानी फेल आया, और नकिरा के बाद फेल आए तो वो उमूमन उसके लिए क्या बनता है? सिफत। तो देखो जब हम तर्जमा करेंगे तो इस इल्लतानी से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाएंगे। तो तू असिरानी, वो दो इल्लतें इसके अंदर मुअसिर हों, बिजतिमाइहिमा, अपने इकट्ठे होने की वजह से, अलग अलग मुअसिर नहीं है बल्कि इकट्ठे होने की वजह से। मसलन जैदुन, जैदुन के अंदर आलमियत है लेकिन अकेली आलमियत मुअसिर है जी? अकेली आलमियत मुअसिर नहीं। जारिबुन, जारिबुन के अंदर वसफियत है लेकिन अकेली वसफियत मुअसिर नहीं, बल्कि दो होंगे और उन तो दो इल्लतें होंगी और उनकी सारी शर्तें भी पूरी होंगी तो फिर ये मुअसिर बनेंगी। बात समझ में आ रही है? तो असिरानी बिजतिमाइहिमा, कि वो दो इल्लतें मुअसिर हों अपने जमा होने, अपने इकट्ठे होने की वजह से। वस्तिजमा इशारा इतिहिमा, इस्तिजमा का माना यहां करें मुकम्मल होना, पूरा होना। वस्तिजमा इशारा इतिहिमा, और अपनी शर्तों के मुकम्मल होने की वजह से, वो दो इल्लतें मुअसिर हों अपने इकट्ठे होने की वजह से और अपनी शर्तों के पूरा होने की वजह से, मुकम्मल होने की वजह से, ये मुअसिर हो फी ही उस इसमें मुआरब में। हां जमीर किसको राजे? इसमें मुआरब जो पीछे मा आया था उसकी तरफ। बात समझ में आ गई? तो वो मुअसिर भी हो फी ही उसके अंदर असारन, और मुअसिर हो किस तरह, ऐसा असर डालें सयजी उस जिक्र हो कि जिसका जिक्र अन करीब आ जाएगा। असारन है मौसूफ नकिरा है और आगे सयजी उस जिक्र हु फेल आया तो ये उसके लिए क्या बनेगा? सिफत बनेगा कि ये दो शर्तें अपने इकट्ठे होने और अपनी शराइत के पूरा होने की वजह से मुअसिर हों यानी असर डालें। असारन सयजी उस जिक्र हु, ऐसा असर जिसका जिक्र अन करीब आ जाएगा। ये मुअसिर हों और इस तरह का असर डालें जिसका जिक्र अन करीब आ जाएगा। आगे चलकर आपको बतलाएंगे कि गैर मुनसरिफ का हुक्म यह है, न उस पर कसरा आ सकता है और न तनवीन आ सकती है। तो देखो ये जब दो इल्लतें जमा हो गई, इन्होंने ऐसा असर डाला कि गैर मुनसरिफ पर कसरा भी अब नहीं आ सकता और तनवीन भी नहीं आ सकती। तो असरन सयजी उस जिक्र हो, इससे मुराद जो आगे वो गैर मुनसरिफ का हुक्म बयान करेंगे कि उस पर क्या असर मुरतब होता है इन दो इल्लतों की वजह से, ना उस पर कसरा आ सकता है और ना तनवीन आ सकती है। बात समझ में आ गई? आगे जरा देखिए, मिन इललिन तिसइन, मतन में था मिन तिसइन, साहिब जामी ने तिसइन से पहले इललिन का लफ्ज निकालकर बतला दिया कि यह तिसइन सिफत वाके है और इसका मौसूफ इललिन महजूफ है। कि गैर मुनसरिफ वो मुअरब है जिसमें दो इल्लतें हों मिन इललिन तिसइन, नौ इल्लतों में से, जिसके अंदर नौ इल्लतों में से दो इल्लतें पाई जाएं। अब तर्जमा सुनिए, गैरुल मुनसरिफ मा अइस्मुन मुअरबुन फीह इल्लतानी तो असिरानी बिजतिमाइहिमा वस्तिजमाई शराइतिहिमा फीह असरन सयजी उज़िक्रुहु मिन इललिन तिसइन। गैर मुनसरिफ वो इसमें मौरब है कि जिसके अंदर नौ इल्लतों में से कोई दो ऐसी इल्लतें हों जो अपने जमा होने और अपने शराइत के पूरा होने की वजह से ऐसा असर डालें जिसका अनकरीब जिक्र आ जाएगा। तर्जमा समझ में आ गया? तो इल्लतानी मौसूफ है और तो असिरानी सिफत है भाई। औ इल्लतुम वाहिदतुम मिनहा, मतन में आया था अवाहिदतुम मिनहा, साहिब जामी ने वाहिदतुन से पहले इल्लतुन का लफ्ज निकालकर बतला दिया कि यह वाहिदतुन सिफत है और इसका मौसूफ इल्लतुन महजूफ है, या उसमें कोई एक ऐसी इल्लत हो। मिनहा आई मिन तिल का तिसई, देखा यह जमीर का मर्जा बतला दिया, एक इल्लत हो उनमें से, किन में से? उन नौ इल्लतों में से। तो यह जमीर वो नौ को राजे है भाई, तो उन नौ में से कोई एक इल्लत हो। तकूम के कायम मकाम हो, ये वाली जो एक इल्लत है ये कायम मकाम हो। तो तकूम के अंदर जमीर है जो किसको राजे है? पीछे जो इल्लत है वाहिदा का जिक्र आया था तो ये उसके लिए सिफत बनेगा। एक ऐसी इल्लत तकूम मकाम हुमा, जो दो इल्लतों के कायम मकाम हो। तो तकूम हाजिहिल इल्लतुल वाहिदतु, ये जमीर का मर्जा बतला रहे हैं कि तकूम के अंदर जो हिया जमीर है किसको राजे है? पीछे वो जो इल्लत वाहिदा का जिक्र आया था, वो इल्लत वाहिदा जो है कायम मकाम हो दो इल्लतों के भाई, तो तकूम हादिहिल इल्लतुल वाहिदतु, कायम हो जाए ये एक इल्लत, मकाम हुमा उन दो इल्लतों के मकाम पर। मकाम हुमा में हुमा जमीर है, ये जमीर किसको राजे साहिब जामी बतला रहे हैं, अ मकाम हातैनिल इल्लतैनी, उन दो इल्लतों के कायम मकाम हो जाए। ये क्या हो जाए, पीछे जिक्र आया था माफी इल्लतानी, ये जो दो इल्लतें जिक्र हुई थी ये हुमा जमीर इनको राजे है, मकाम हुमा अ मकाम हातैनिल इल्लतैनी, उन दो इल्लतों के कायम मकाम हो जाए भाई। भाई ये वाली एक इल्लत उन दो इल्लतों के कायम मकाम हो जाए, क्या मतलब है भाई, दो एक इल्लत दो इल्लतों के कायम मकाम हो जाए, तो आपको बतला रहे हैं बी अंतु असीरा वहदा हाता सीरा हुमा, कि यानी इस एक इल्लत का दो इल्लतों के कायम मकाम होने का माना यह है कि जैसे वो दो इल्लतें मुअस्सिर थी, इसी तरह ये एक इल्लत भी उन्हीं की तरह मुअस्सिर हो, उन्हीं जैसा असर डालें, और जैसे उन दो की वजह से एक मुअरब जो है वो गैर मुनसरिफ बनता था, तो इस एक की वजह से ये भी उसी जैसा असर डालेंगी और इस एक की वजह से भी वो मुअरब गैर मुनसरिफ हो जाएगा। तो बी अंतु असीरा वहदहा तासीरा हुमा, ये बात तस्वीरिया है, सूरत बतला रहे हैं कि ये एक इल्लत दो के कायम मकाम कैसे होगी, उसकी सूरत क्या है। कहते हैं बी अंतु असीरा वहदहा, बई सूरत की ये अकेली असर डाले, तासीरा हुमा उन दो जैसी तासीर, उन दो जैसा असर डाले। तो यहां तक गैर मुनसरिफ की तारीफ मुकम्मल हुई। गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं, वो मुअरब जिसके अंदर कोई दो इल्लतें हों नौ इल्लतों में से, या कोई एक ऐसी इल्लत हो जो उन दो के कायम मकाम हो, यानी उन्हीं की तरह मुअस्सिर हो भाई। तो यहां जो इन्होंने मां की तफसीर की, अइस्मुन मुअरबुन, मां की तफसीर किसके साथ की, इसमें मुअरब के साथ की, लिहाजा अब आप कोई मबनी ले आए और इश्काल करना चाहें कि देखो ये फलां मबनी है, इसके अंदर दो इल्लतें पाई जा रही हैं, ये क्या है, मबनी है लेकिन इसमें दो इल्लतें पाई जा रही हैं, और आपकी तारीफ के मुताबिक जिसमें दो इल्लतें पाई जाएं उसको क्या होना चाहिए, गैर मुनसरिफ। लेकिन इसको उलमाए नह गैर मुनसरिफ नहीं कहते, वो तो इसको मबनी कहते हैं, वो तो इसको मबनी कहते हैं, तो आपकी तारीफ जामिया नहीं। तो जवाब गुजर गया, मा अइस्मुन मुअरबुन, मा से क्या मुराद है, इसमें मुअरब मुराद है, हम मबनी की बात ही नहीं कर रहे, लिहाजा मबनी को लेकर आप एतराज भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई, तो इसलिए मां की का मिस्ताक जिक्र कर दिया कि मां से मुराद हर चीज दुनिया की नहीं है बल्कि इसमें मुअरब है, लिहाजा आप मबनी वगैरह को लेकर इश्काल नहीं कर सकते। आगे देखिए, वहिया अइल इलल तिसउ मजमूउ मा फी हाज़ैनिल बैतैनी, जी ये हिया जमीर राजे है इलल तिसउ को, और वो नौ इल्लतें वो ये हैं, आगे शेर में वो नौ इल्लतें बयान करेंगे भाई। तो हिया जमीर किसको राजे, इलल तिसउ, पीछे जो नौ इल्लतों का जिक्र आया था और वो नौ इल्लतें हैं तो वो जमा है, और जमा बतावीले जमातुन वाहिद मुअन्नस के हुक्म में, इसलिए उसकी तरफ हिया जमीर राजे कर दी कि वो नौ इल्लतें ये वाली हैं भाई। देखो आगे नौ इल्लतें आ रही हैं, जरा शेर को देखो भाई, आदलू व वसुं व तानीसुं व मारिफतुन व उजमतुन सुम जमुन सुम तरकीबू व नूनु जाइदतन मिन कबलिहा अलिफुन व वजन फेल व हाजल कौल तकरीबू, ये दो शेर हैं भाई, दो शेर, और इसमें वो नौ इल्लतें जिक्र की गई हैं भाई। अब ये हिया है मुबतदा, वो नौ इल्लतें कौन सी हैं, आगे शेर के जिक्र कर दिया कि वो अदल वसफ तानीस मारिफा वगैरह हैं, तवज्जो है। तो इस पर इश्काल होता है कि हिया जमीर यह है मुबतदा, और आगे अदलों व वसफों व तानीसुन वगैरह यह क्या है, इसकी खबर। तो मुबतदा तो है जमा, क्योंकि हिया किसको राजे, इलल तिसा को, और इलल तिसा नौ हैं तो ये जमा है, और आगे खबर जो आ रही है अदलुन व वस्फुन व तानीसुन। अब एक एक का हमल करो जरा मुबतदा पर, वो इलल तिसा अदल हैं, ये तो बात नहीं बनती, वो नौ इल्लतें अदल हैं, सिर्फ अदल वो नौ इल्लतें हैं या और भी हैं साथ, तो अदल का गोया हमल हो रहा है मुबतदा पर यानी हिया पर कि वो नौ इल्लतें अदल है, ये दुरुस्त नहीं। इसी तरह अब अगला है वसफ, वो नौ इल्लतें वसफ है, ये भी मुफरत का आतफ जामा पर सही नहीं है भाई, मुब्तदा क्या है जमा और खबर क्या है मुफरत। फिर तीसरे को ले आए और वो नौ इल्लतें तानीस हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है भाई, वो तानीस तो अकेली नौ इल्लतें नहीं है, इश्काल समझ में आ रहा है। तो यहां इश्काल होता है कि भाई यहां तो हमल सही नहीं बनता, आगे अदलों व वस्फों व तानीसुन अलग अलग जिक्र हो रहे हैं और इनमें से हर एक का हमल किस पर है, मुब्तदा पर, और यह हमल सही नहीं बनता क्योंकि मुब्तदा है जमा और खबर क्या बन जाएगी मुफरत, और मुफरत का हमल जमा पर नहीं हो सकता, वह नौ इल्लतें अदल हैं, यह नहीं हो सकता, यह कलाम सही नहीं। तो साहिबे जामी आपको बतलाएंगे कि भाई यहां पर आतफ मुकद्दम है हमल पर, यहां पर आतफ मुकद्दम है हमल पर, यह बात मैं पहले बयान कर चुका हूं, कहां पर अलकलिमतु हियस्मू व फ़िअलुन व हरफुन, तो यहां इश्काल होता था कि हिया जमीर किसको राजे कलिमा को और इस्मू व फ़िअलुन व हरफुन इनके दरमियान वाव आया और वाव किस लिए आता है जमा के लिए, मालूम हुआ ये तीनों जमा होंगे एक लफ्ज के अंदर तो उसको कलिमा कहेंगे भाई, हालांकि ऐसा तो कोई लफ्ज है ही नहीं कि वो इसम फेल और हर्फ तीनों इसमें जमा हो जाए इकट्ठे हो जाए। तो जवाब गुजर गया था कि यहां पर हमल मुकदम है आतफ पर, पहले आतफ न करो बल्कि एक एक का अलग अलग हमल करते जाओ भाई, तो हमल मुकद्दम है आतफ पर, तो अब क्या बन गया कलीमा इसम है, देखो अब बात ठीक बन गई, कलीमा फेल है अब बात ठीक बन गई, और कलीमा हर्फ है अब बात ठीक बन गई। तो वहां देखो हमल मुकद्दम था आतफ पर भाई, और यहां पर आतफ मुकद्दम है हमल पर कि पहले सारों का एक दूसरे पर आतफ करो, नौ इल्लतें जिक्र हैं और उनके दरमियान हरूफ आतफ हैं, तो इन सारों का एक दूसरे पर आतफ करो, अब ये नौ उमूर बन गए, ये खबर बन गई हिया की, हिया वो इलल तिसा, ये नौ चीजें हैं, अब बात ठीक बन गई, हिया जो है वो भी जमा है और आगे जो खबर है वो भी आतफ के बाद क्या बन गई जमा बन गई। देखिए भाई किताब पर कहते हैं वह हिया अल इलल तिसा, देखो जमीर का मर्जा बतला दिया कि हिया जमीर इलल तिसा को राजे है, तो कहते हैं वह हिया अल इलल तिसा मजमूउ मा फी हादैनिल बैतैनी, वो मजमुआ है उसका जो इन दो शेरों में है, इलल तिसा क्या है वो मजमुआ है उन चीजों का जो इन दो शेरों में आई, यानी जो उनका मजमुआ बनाओ आतफ करो एक दूसरे पर फिर उसके बाद इस सारे मजमुए को खबर बना दो, तो कहते हैं वहिया अल इलल तिसा और वो तिसा इल्लतें जो हैं मजमुउ मा फी हाज़ैनिल बैतैनी, वो मजमुआ है उन चीजों का जो इन दो शेरों में है, मिनल उमूर तिसअती यानी कि नौ उमूर, वो नौ उमूर जो है उनका मजमुआ इसके लिए खबर बनेगा, यानी आतफ मुकद्दम है हमल पर, यह बतलाना चाहते हैं। ला कुल्लु वाहिदिन, ना के हर एक, यानी हर एक इलल तिसा नहीं है बल्कि नौ का मजमुआ इलल तिसा है भाई, ये ला कुल्लु वाहिदिन इसका आतफ है मजमुउ मा पर, किस पर मजमू के इलल तिसा वो मजमुआ है इन चीजों का, ला कुल्लु वाहिदिन हर एक नहीं, वो हर एक इलल तिसा नहीं है, हत्ता युकाला यहां तक कि एतराज किया जाए, इधर देखिए वही एतराज जिक्र करेंगे, कहते हैं कि इलल तिसा उन नौ चीजों का मजमुआ है, उनमें से हर एक इलल तिसा नहीं है कि यहां तक क्या फिर एतराज करें कि ये तो हर एक का हमल इलल तिसा पर नहीं हो सकता, एक एक का हमल इलल तिसा पर नहीं हो सकता, ये एतराज आप नहीं कर सकते क्योंकि इनमें से हर एक इलल तिसा नहीं है बल्कि इनका मजमुआ इलल तिसा है। तो कहते हैं ला कुल्लु वाहिदिन इनमें से हर एक जो है वो इलल तिसा नहीं है, हत्ता युकाला यहां तक कि एतराज किया जाए, ला यसिहुल हुक्मु अलल इलल तिसा बिकुल्लि वाहिदिन मिन हादिहिल उमूरी, के हुक्म लगाना सही नहीं है इलल तिसा पर इन उमूर में से हर एक का, इन उमूर में से हर एक का अलहदा अलहदा हुक्म लगाना इलल तिसा पर सही नहीं। कहते हैं ये एतराज आप तब करते अगर हर एक को हमने खबर बनाया होता, हर एक खबर नहीं है, मजमुआ जो है वो खबर है। वज़ालिकल मजमुउ और वो मजमुआ ये है भाई शिअरुन अदलुन व वस्फुन व तानीसुन व मारिफतुन व उजमतुन सुम्म जमउन सुम्म तरकीबु अदल है और वसफ है और तानीस है और मारिफा है, व उजमतुन और उजमा है, सुम्म जमउन और जमा है, सुम्म तरकीबू और फिर तरकीब है। भाई यहां बाकियों के दरमियान व आ रहा था आतफ के लिए और आगे कहा सुम्म जमउन और सुम्म तरकीबुन, जमा और तरकीब के लिए सुम्मा लेकर आए, और सुम्मा याद रखो तराखी के लिए आता है, किसके लिए तराखी। जाअनी जैदुन सुम्मा अमरुन, आया मेरे पास जैद फिर अमर, और ये सुम्मा तराखी के लिए आता है यानी दो चीजों में दूरी बयान करता है। मालूम हुआ जैद पहले आया है, अमर बाद में, और अमर फौरन नहीं आया उसके बाद, काफी देर बाद आया है। बात समझ में आ गई। तो तराखी का माना है दो चीजों में दूरी करना, भाई दूरी करना, तो सुम्मा भी क्या करता है दो चीजों में दूरी। तरतीब का भी फायदा दिया कि जानी जैदुन सुम्मा अमरुन, मालूम हुआ जैद पहले है और अमर बाद में, और अमर फौरन बाद में नहीं आया बल्कि काफी देर के बाद आया है भाई, तो सुम्मा तराखी के लिए आता है। तो यहां शेर में भी सुम्मा आया, तो इससे तो बजाहिर यूं मालूम होता है कि पहले जो चार पांच जिक्र हुए ये पहले हैं और फिर इनके बाद काफी देर के बाद जमा और तरकीब जो है ये सबब बनेंगे। तो आपको बतलाएंगे साहिबे जामी कि यहां पर जो सुम्मा आया सिर्फ शेर के वजन की हिफाजत के लिए लाया गया है। मैंने बतलाया था आपको, याद रखो, याद रखो, ये जो अशआर हैं इनके खास औजान होते हैं, एक हर्फ भी इधर उधर हो जाए पूरे शेर का वजन खराब हो जाता है। आप भी अपनी जुबान में अशआर पढ़ते हैं, देखो अशआर के अंदर एक खास तरन्नुम होता है, खास रवानगी होती है, शेर पढ़ते ही अजीब लुत्फ महसूस होता है। और जो शेर का वजन, जिस शेर का ठीक ना हो, सुनने वाला जिसको जरा भी जौक होता है सुनते ही कह देता है भाई इस शेर का वजन ठीक नहीं है। तो अशार के अपने खास औजान होते हैं, तो यहां उस वजने शेर की हिफाजत के लिए सुम्मा लेकर आए। अगर सुम्मा के बजाय वाव ले आते तो फिर शेर का वजन सही ना रहता भाई। तो कहते हैं वल उदूल फी अतफी हातैन अल्लतैन मिन अल वावी इला सुम्मा, और ये जो उदूल किया गया फी अतफी हातैन अल्लतैन, इन दो इल्लतों के अतफ में, कौन सी दो इल्लतें, सुम्मा जमउन सुम्मा तरकीब, ये जो दो इल्लतें हैं जमा और तरकीब, इनके अतफ में उदूल किया गया, किससे, वाव से सुम्मा की तरफ, वाव के बजाय क्या ले आए सुम्मा ले आए। तो ये जो उदूल किया गया यानी फिरा गया फी अतफी हातैन अल्लतैन, इन दो इल्लतों के अतफ में, मिनल वावी इला सुम्मा, वाव से सुम्मा की तरफ जो उदूल किया गया, लिमुजर्रदिल मुहाफजति अलल वज़्न, ये सिर्फ वजन पर मुहाफजत के लिए है। मुजर्रद का माना सिर्फ, ये सिर्फ वजन पर मुहाफजत के लिए है, वजन की हिफाजत के लिए है, यहां और कोई मकसद नहीं है, तराखी वगैरह यहां मकसूद नहीं, ये सब सबब बनेंगे और इनमें से किसी के दरमियान तराखी नहीं है भाई। आगे देखिए वन्नूनु ज़ाइदतम मिन क़ब्लिहा अलिफुन, और नून भाई ज़ाइदतन, वन्नूनु ज़ाइदतम मिन क़ब्लिहा अलिफुन व वज़्नु फ़िअलिन व हाज़ल क़ौलु तक़रीबु, और नून जाइदतन इस हाल में कि जायदा हो, मिन कबलिहा अलिफुन उससे पहले अलिफ, असबाब मना सर्फ जिक्र हो रहे हैं, पहले शेर में क्या आया अदल वसफ तानीस मारिफा उजमा जमा तरकीब, ये सात हो गए। आगे वन नून जाइदतन मिन कबलिहा अलिफुन, और नून इस हाल में, ये जायदा हाल वाके हो रहा है नून से, और नून इस हाल में कि इस नून से पहले अलिफ जायदा हो, इस नून से पहले अलिफ जायदा हो, तो ये अलिफ नून जायदा तान का जिक्र आ गया। व वज़्नु फ़िअलिन, और नौवां सबब क्या है, वज़्ने फ़ेल है। व हाज़ल क़ौलु तक़रीबु, और ये वाला कौल तकरीब है, देखो हाज़ल क़ौल ये है मुबतदा और तकरीब है उसकी खबर, और ये मस्तर है, तकरीब बाब तफ़ईल का मस्तर है, और आप जानते हैं मस्तर का हमल जात पर सही नहीं। जैसे आप कहें जैदुन अदलुन, तो ये अदलुन किस माना में लेना पड़ेगा, आदिलुन के माना में लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि आदल मस्तर है और मस्तर का हमल जात पर सही नहीं। तो चुनाचे फिर मस्तर को इसमें फाइल के माना में ले लेते हैं या कभी इसमें मफूल के माना में ले लेते हैं, जैसे जैदुन आदलुन, यादल को किस माना में ले लिया, आदिलुन, इसमें फाइल के माना में ले लिया। अब कलाम ठीक बन गया, जैदुन आदिलुन, जैद आदल करने वाला है भाई, यानी जैद आदिल है। तो यहां पर भी इसी तरह है, वहाजल कौलू है मुब्तदा और तकरीबन यह है उसकी खबर, और खबर तो मस्तर है और मस्तर का हमल जात पर सही नहीं। तो फिर आप इसको इसमें फाइल या इसमें मफूल जिस तावील में भी करना चाहें कर सकते हैं। मसलन हम इसको इसमें फाइल की तावील में कर लेते हैं, और ये वाला कौल मुकर्रिबुन, करीब करने वाला है, ये वाला कौल करीब करने वाला है। मुराद ये है कि ये नौ असबाब जो हैं, ये जो नौ इल्लतें हैं, इनको शेर की सूरत में जिक्र किया गया, और शेर को याद करना आसान होता है, वो इंसान को फिर भूलता नहीं है। तो ये वाला कौल जो है, यानी इन नौ इल्लतों को शेर की सूरत में जिक्र करना मुकर्रिबुन, ये करीब करने वाला है इन नौ इल्लतों को, इलल अजहानी, जहनों के, ये जहनों के करीब करने वाला है ये कौल, लिल हिफ्जी, याद करने के लिए। मुकर्रिबुन ये कौल क्या है, तकरीबन ऐ मुकर्रिबुन, करीब करने वाला है भाई, क्या माना, फिर भी बात पूरी समझ में नहीं आ रही, तो उसके साथ और लफ्जों को जोड़ दें जिससे बात वाजे हो जाए कि ये कौल करीब करने वाला है, यानी इन नौ इल्लतों को ये करीब करता है जहनों के, लिल हिफ्ज़ी, याद करने के लिए, इनको यानी हिफ्ज़ करना, याद करना आसान हो जाता है। एक इनको वैसे जिक्र किया जाए वो याद करना मुश्किल होगा, और एक अशआर की सूरत में जिक्र कर दिया जाए तो अब ये हिफ्ज़ के लिए जहनों के करीब हो गया, जहन इसको जल्दी याद कर लेंगे। तो ये तकरीब को किस माना में लिया, मुकर्रब इसमें फाइल के माना में, या इसको मुकर्रब इसमें मफूल की तावील में कर लें कि हाजल कौलू, ये वाला कौल मुकर्रबुन इलल अजहानी, ये क्या है, जहनों के करीब किया गया है, लिल हिफ्ज़ याद करने के लिए, क्योंकि शेर की सूरत में है। बात समझ में आती, तो दोनों तरह आप इसकी तावील कर सकते हैं। यहां तक बात अच्छी तरह समझ में आ गई, हल हो गया सारा। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।